الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تو پہلے تو مجھے آپ اگر آپ کو معذرت کرنی ہے تو پچھلے دو ہفتوں میں سفر کر رہا اور اس سے پہلے کی مجلس میں سفر کر جانے کا اعلان نہیں کر سکا. عام طور سے میرے رفیق مولوی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں تو مجھے یاد رکھتے ہیں بیان کرنے کے لیے رکھتے ہیں. اس میں موجود نہیں تھے اور مجھے ذہن میں نہیں رہا تو آپ اگر آپ سے طرح کر دیں تو آئندہ دو ہفتے میں میری اچھی نہیں ہوگی. اس لیے جن اگر آپ کو اس اعلان نہ کرنے کی وجہ سے زحمت ہوئی ان سے معافی کا خاص بار ہے. آج بھی الحمد للہ موقع مل گیا لیکن اگلا اتوار تو پھر مجھے غالباً سفر کر دوں گا تو اس واسطے اگلے اتوار کو بھی مجلس نہیں ہوگی. البتہ اس سے آنے والے اتوار کو ان شاء اللہ عید کے بعد جو آئے گا اس میں ان شاء اللہ برادری ہوگی. یہ ایک حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزل زيت في بني اسرائيل وصدار قلبة لهم فقالوا يا قلبة لا تنبهي على زيتنا فتحنا الجراء في بطنها فذكروا لنبي لهم فقال ان مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. هذا عبد الله بن علي رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو پچھلی کتابیں جو پچھلی انبیاء کرام سے متعلق ہیں ان کا جو علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تھا. تورات، انجیل، زبور، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو عطا فرمایا تھا. تورات کی بہت سے حصے ان کو یاد تھے، انجیل کے علاج حصے یاد تھے. شام کے اندر رہے تو وہاں سے نصارا سے انہوں نے نصارا یہود سے ان کی کتابیں پڑھی تھی اور مقصد پڑھنے کا یہ تھا کہ تاکہ ان کے مذہب کی معلومات ان کو حاصل ہوں. تو بہت سی ایسی روایتیں جو عام مسلمانوں کو معلوم نہیں تھیں یا بلاج میں الگ الگ رہنے سے معلوم تھے اس راستے کے لیے پچھلی کتابوں سے عالم تھے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ واقعہ انہوں نے کسی پچھلی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھی ان کے پاس ایک مرتبہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایک مہمان آیا اور گھر میں ایک کٹیا پلی ہوئی تھی. تو انہوں نے خیال لیا کہ یہ مہمان آیا ہے. کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی اجنبی شخص نظر آئے تو اس پر بھونکتے. تو انہوں نے سوچا کہ جو مہمان آیا ہے تو کہیں یہ کتیا ہمارے مہمان کے اوپر بھونکنے نہ لگے تو ہمارے مہمان کو تکلیف ہوگی. لہٰذا انہوں نے کتیا سے کہا کہ یا قلبۃ لا تنبهی علی ضیفنا، کہ اے کتیا تو ہمارے مہمان آیا ہے ان کے اوپر بھونکنا مت، اس کو بھونکنے سے روکا. ابھی آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی کتیا کتا وغیرہ پالتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ कुत्ता वगैरह जानवर उससे मालूम हो जाते हैं और उनको कोई बात बताने या उनसे कोई बात किसी बात से परहेज कराने के लिए उनके अपने इशारे होते हैं, अपनी जबान होती है और उसमें वो उनको समझा देते हैं। तो कुतिया से कहा कि तू हमारे मेहमान के अंदर भौंकना मत। तो वो कुतिया के बेचारे खामोश हो गए, उसने वो भौंकी नहीं, लेकिन उसके पेट में कुछ पीले थे, कुछ बच्चे थे पेट में, उन्होंने चेखना शुरू कर दिया। पेटों ने चेखना शुरू कर दिया। तो ये शख्स जो है ये बड़ा हैरान हुआ कि कुतिया तो बोलने रही और ये पिल्ले बोलने शुरू कर दिया, उन्होंने अभी पेट ही जमता थे। तो उन्होंने जाकर अपने जो नबी थे उनसे जिक्र किया, चलो नबी जाकर पेट आया तो कुतिया को मना किया था, कुतिया तो खामोश हो गई लेकिन अंदर से पिल्ले बोलने लगे। तो नबी जो जिसने भी की उम्मत है उनके पास जाकर यह बात का बयान किया तो नबी ने कहा तो उन्हें मसल हादा तो मसल उम्मत कपून उबादत जो गली रहा वहाँ ओलमा। तो ये जो पिल्ले बोले हैं तो ये इनकी मिसाल ऐसी है कि तुम्हारे बाद एक उम्मत आएगी तो उसके अंदर ये होगा कि जो बेवकूफ लोग होंगे या बेइल्म जाहिल और बेवकूफ, ये लोग अपने जमाने से उलमा पर गालिब आ जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। नबी ने ये पेशेंगोई फरमाई कि आखिरी दौर में ऐसा वक्त आएगा जबकि बेवकूफ जाहिल अनपढ़ या कम से कम दीन से बेखबर लोग जो हैं वो उलमा पर गालिब आ जाएंगे। मुझे मिसाल दे दी तो देखो जैसे कुतिया जो थी वो तो आमतौर पर बोलती है, वो तो रही खामोश और अंदर जो पेट में पिल्ले हैं अभी तक दुनिया में आए नहीं, अभी दुनिया से हलाने लगी, अभी कुछ देखा भी नहीं और ना कोई भौंकने का मौका ना कोई भौंकने की वजह, लेकिन दौड़ा शुरू कर दिया। तो फरमाया कि ऐसी मिसाल होगी उन आम अंतर जाहिल लोगों की जो अपने जमाने से उलमा पर भौंकेंगे, यानी अपने जमाने से उलमा किस तौर पर तंकीदें करेंगे, उनको बड़ा बड़ा कहेंगे, उनको कांवर कसने का निशाना बनाएंगे, उनके ऊपर एतराजात करेंगे और कहेंगे कि हम जिस तरह चाह रहे हैं वैसे ही उलमा हो जाए। तो ये मिसाल दी कि जैसे कुत्ते के पिल्ले जो अभी तक दुनिया में वजूद में भी नहीं आए, दुनिया की हवा भी नहीं लगी, कुछ पता भी नहीं क्या होना है दुनिया में और उसके बावजूद वो भौंक रहे हैं, तो ऐसी मिसाल हो जाएगी उन लोगों की जो अंतर जाहिर होने के बावजूद अपने जमाने से अहले इल्म पर एतराज़ात करेंगे, कान तस्नी करेंगे। तो ये एक खबर दी एक नबी ने, मैंने बताई कि एक नबी ने खबर दी कि आखिरी दौर में ऐसा होने वाला है। यानी चाहिए तो ये कि जो लोग इल्म नहीं रखते वो अहले इल्म के पीछे चले। तुम्हारे करीम साहब कहता है फसल आलम दिक्र इनकुम तुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो जिनके पास इल्म है उनसे पूछो और उनसे पूछकर अमल करो। तो दुनिया के हर मामले का फायदा यही है, आपके पास आप अगर बीमार होते हो तो कुछ पता नहीं कि क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होगा, तो जाकर किसी डॉक्टर से पूछते हो कि भाई मुझे थोड़ा तकलीफ हो गई है तो उसका इलाज करो, वो जैसा कहता है उसके ऊपर अमल करते हो। तो दुनिया के हर शोबे का हाल यह है कि अगर इंसान को खुद इल्म ना हो तो वो जानने वालों से पूछता है और जानने वाले से पूछने पर जो वो बता देते हैं उसके ऊपर अमल करता है। यही फायदा दीन के अंदर भी है, कुरान ने बताया कि जब तुम्हें इल्म ना हो दीन का तो जो दीन के जानने वाले हैं उसका इल्म रखने वाले हैं उनसे पूछो और उन पर अमल करो। लेकिन आज दुनिया के अंदर उल्टी दंगा बहने शुरू हो गई, जिन्होंने एक दिन कभी दिन का इल्म हासिल करने में एक दिन भी खर्च नहीं किया और न कभी इस रास्ते में कोई मेहनत उठाई, वो बड़े आगे बढ़ बढ़कर एतराज करते हैं अहले इल्म के ऊपर कि मैं ये नहीं कर दिया, मालूम नहीं कर दिया, मालूम नहीं है पाबंदी लगा दी, मालूम नहीं है मुश्किल खड़ी कर दी, तो सारा एतराज का घटक बनाते हैं अहले इल्म को। जब वो बताएं अहले इल्म कि फला चीज हलाल है, फला फला चीज हराम है, अपने इल्म की बुनियाद पर वो बात बताते हैं, तो उसके जवाब में लोग ऐतराज करना शुरू कर देते हैं, तो वो हकीकत आम करार देना शुरू कर दिए। तो ऐतराजात और ऐतराजात का एक लामतनाही सिलसिला है जो पहले इल्म के ऊपर आयद किया जाता है। तो पहले मुझे हमने पहले खबर दे दी कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुटिया के पेट में बोल नवाले कुए कभी वजूद में आए नहीं, कुछ पता है नहीं और भागना शुरू कर दिया, ऐसे ही योगा का हाल। और लफ्ज ये इस्तेमाल करना है कि गालिब आ जाएंगे उनके कुछ लोग उनके उलमा का, गालिब आ जाने के दो माना, एक मतलब तो ये है कि माशरे में बहुत कसरत से ऐसे लोग फैल जाएंगे जो उलमा पर ऐतराज करेंगे, उलमा से दरगस्ता करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि भाई उलमा जो बात कर रहे हैं वो न मानो हमारी मानो। अखबार उठा के देखो आप तो उसमें ये सब आपको एक से एक आदमी नजर आएगा जो शरीयत और दीन के मामले में अपनी राय चलाता है और जो अपना इतिहास करता है कि हमारे दिल से आ रहा है ये उलमा जो कह रहे हैं शरीयत की बात ये तो गलत कह रहे हैं। हालांकि ना कुरान को जाने ना हदीस को जाने ना उर्दू में तफसीर हदीस को जाने और ऐसा करना शुरू करेगा तो दस लक्ष ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे। एक तो मतलब गलबे का यह है, दूसरा मतलब गलबे का यह भी हो सकता है कि बाद मतलब उलमा भी दो किस्म के होते हैं। एक तो वो उलमा है कि जो उलमाए हक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उम्मत की हिदायत की जिम्मेदारी सौंपी है और वो उस फरीजे को फरीजा समझ कर अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों का तो हाल ये होता है कि सारे सारी दुनिया मलामत किया करे, सारी दुनिया ताना दिया करे, लेकिन वो जिस बात को हक समझते हैं उससे फिरते नहीं। कितने ताना दे लो, कितना ही ऐतराज कर लो, जो हक बात है उसे नहीं छोड़ेंगे। वो अलमाए हक अल्लाह ताला ने उनको हिदायत का नूर अदा फरमाया, तो वो किसी के कहने सुनने से किसी के ऐतराजात से मगलूब होकर अपने हक की बात को बदलते नहीं, अपना रास्ता तब्दील नहीं करते। और सारी उम्मत में भरे हुए हैं ऐसे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सारी दुनिया एक तरफ और वो जो आपको संभाले हुए वो आदमी एक तरफ, वो महज लोगों के कहने सुनने की वजह से अपना रास्ता तर्क नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई ऐतराजात और ये ताने और ये तस्वीर और ये कंफ्यूजन ये तो अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से भी यही कुछ उनके ताने दिए गए, क्या कुछ ताने नहीं दिए गए, मजबूर उनको कहा गया, जादूगर उनको कहा गया, और लोगों ने क्या कुछ ताने दिए गए अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम और अंबियाए कराम के वारिसीन को बेशुमार ताने दिए गए। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला सही रास्ते पर रखे और हक के ऊपर कदम होने की तौफीक अता फरमाए तो ये ताने और ये तराजात तो दरहकीकत तो उलमाए हक और दायान हक के गले का हार है, उनके सर का ताज है, जो उनके लिए दीनत का सबक है। अल्लाह तबारक व तआला उनको अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाई। लेकिन दूसरा एक गुरु ऐसा भी होता है तो जो नाम से आलिम है उसका और इस माने में आलिम है तो उसने कुरान समझ की किताबें पढ़ रखी है और किसी मदरसे से समझ भी ले रखी है मसलन, लेकिन इल्म उसकी जिंदगी में रचा बसा नहीं और उसके कल्ब के ऊपर हुक्मरान नहीं हुआ, तो उसका नतीजा यह है कि ऐसा शख्स जो है वो आवाम और आम जाहिलों और नावाकिफ लोगों की खुशनूदी की फिक्र में रहता है कि ये लोग किस बात से खुश होंगे, किस बात से क्या बात कहूंगा तो लोग मेरे मुतकिल हो जाएंगे और क्या बात कहूंगा तो ये मुझसे भाग जाएंगे। तो उसकी फिक्र इसको इस तरफ नहीं होती कि वो अल्लाह तबारक व तआला को क्या बात पसंद है और क्या नापसंद है, वो आवाम से खुशनूदी देखता है, आवाम की राजी करने की फिक्र करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके नतीजे में बजाय इससे कि आवाम उसके पीछे चले वो आवाम के पीछे चलता है। तो लोगों अगर मैं ये बात कर दूंगा तो लोग जो है नाराज हो जाएंगे, बुरा समझेंगे और मुझे ताने देंगे, लिहाजा उससे बचने के लिए चले ये कर दें और किसी मामले में मुदाहनत कर जाऊं, कुछ भी दिखा जाऊं, कहीं गर्मी कर दूं जहां हकीकत में सख्ती करने की जरूरत है वहां गर्मी कर दूं, जहां गर्मी करने की जरूरत है वहां सख्ती कर दूं, इन आवाम को खुश करने के लिए, ताकि ये लोग मुझे बड़ा समझें, मुझे मुजाहिद करार दें, मुझे बड़ा अल्लामा करार दें। अल्लाह बताए ये सोचकर बाद में सारा पैदा हो जाता तो है उसका नतीजा यह है कि बजाय इसके ओलामा रहनुमाई करते हैं आवाम की, आवाम रहनुमाई करते हैं ओलामा की, तो ओलामा पर सुफहा के गालिब आ जाने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें कसरत से जाहिल लोग या जो इनसे वो आकर हम लोग आके काम करते हैं किसी आलिम का और उसको मजबूर करते हैं, तो उसके नतीजे में वो उनके आगे देर हो जाता है, महरूम हो जाता है और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक बातें करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह बताया अल्लाह तआला नसीब रखे हम सबको उस अंजाम से कि जहाँ अहले इल्म जो है वो गैर अहले इल्म की बातों से महरूम होकर पत्ते जारी करने शुरू कर दे या गैर अहले इल्म की बातों से महरूम होकर अपनी दावत का रास्ता तब्दील कर दे, तो ये भी हमारे यहाँ उसका भी मुशाहदा होता है ज़्यादा था कि लोग जो हैं वो मखलूक को रजामंदी की शक्ल में पड़ जाते हैं। तो इन दोनों बातों से मुतनब्बिह फरमा दिया नबी ने कि ऐसा आने वाला है, इससे परहेज करो। सही करने अमल यह है कि भाई एक मरतबा अच्छी तरह जायजा लेकर जांच पड़ताल करके देखो कि कोई वाकई आलिम है कि नहीं है, क्योंकि आलिम के भेद में बहुत से डाकू भी फिरते हैं, दुकानदार भी फिरते हैं, लिहाजा पहले एक मरतबा अच्छी तरह जांच लो, पड़ताल कर लो कि ये आलिम वाकई आलिम दीन है या नहीं, मुतबे सुन्नत है या नहीं, और वाकई दीन इसके पेशे नजर है या दुनियादारी कर रहा है, इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। लेकिन जब जांच पड़ताल करने के बाद कोई आदमी ऐसा मिल गया कि जिसके इल्म पर, जिसके राय पर और जिसके खुलूस पर और उसके तकवा पर एतमाद हो गया, तो अब बजाय इससे कि तुम अपनी राय चलाओ और जहाँ जाकर उसे मशवरे दो तुम यूँ कर लो यूँ कर लो, उसके बजाय अब उसकी मर्जी उसके हुक्म को देखो कि वो किस बात को सही और किस बात को गलत कह रहा है, बस उसकी पैरवी करो तो तुम्हारा फरीदा इंशाल्लाह इस तरह अदा हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारा बता रहा कहाँ तुम देख जाओगे। अल्लाह मेरा भाई जो माजी उनसे दर्जा फिल्म फरमाए वो फरमाया करते थे कि पुराने करीम में अल्लाह तुम्हारे बता रहे जहाँ तकवा का हुक्म दिया तो साथ में उस तकवा पर अमल करने का तरीका भी बताया। फरमाया कि या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, तो तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करने का रास्ता क्या है, एक सादिकीन की सोहबत अख्तियार करो, सादिकीन की सोहबत अख्तियार करो जो सच्चे हो, सच्चे वाले जो माने जबान के सच्चे, हाथ के सच्चे, अमल के सच्चे, एतकाद के सच्चे, हर सदा जिंदगी में उन्होंने सच्चाई को अपनाया हुआ है और सुलूक को अपनाया हुआ है, ऐसे लोगों की ये काफी बन जाओ, उनके सोहबत अख्तियार करो तो तुम बहुत तकवा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। ये तरीका पुराने करीम ने बताया। तो वैसा सवाल करते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इस दौर में हम सादिकीन कहाँ से लाएं, सादिकीन मिलते कहाँ हैं जो इस मेयार पर पूरे उतरते हो जिसको कुरान का यकीन कह रहा है कि हाथ के सच्चे और जबान के सच्चे और एतकाद के सच्चे और अमल के सच्चे, क्योंकि कहने वाले को ये कहते हैं कि भाई धोखाबाजी का दौर है, तो जैसे इस्लाम ने कहा कसा बंदा जो तेरे शागिर्द बंदे किधर जाए तो दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी, तो जो दरवेशी दरवेश बने फिरते हैं जो मुतक बेरोजगार बने फिरते हैं उसमें भी अयारी है, सुल्तानी में भी अयारी है, तो सारे बंदे जाए किधर, खुदा बंदा ये तेरे सारे दिल बंदे किधर जाए कि दलवे की भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी, तो कहाँ से लाए खाते थे? गाड़ी साहब कम से लाकर रोल अगर आपके दरिया ग्रहण करना है, इसका दो जवाब दिया जाता है, और बड़े काम के जवाब फरमाया कि पहले तो सुन लो कि इमाम गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, तफसीर कबीर में, कि ये आयत जहाँ ये बतला रही है कि साबिकीन की सोबत अख्तियार करो, वहाँ साथ साथ ये आयत खुशखबरी भी दे रही है कि साबिकीन इंशाल्लाह आखिर दम तक बाकी रहेंगे। कोई जमाना ऐसा नहीं आएगा मुसलमानों का जबकि उसमें साबिकीन मौजूद न हो, और वजह उसकी बयान करवाते हैं हमारे रहमतुल्लाह अलैह के, जो जो कुरान ने कहा कि साबिकीन के साथ साथी हो जाओ, उनके सोबत अख्तियार करो, ये कुरान का हुक्म है। तो कुरान का हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए तो नहीं है, सिर्फ ताबेईन के लिए तो नहीं है, सब ताबेईन के लिए तो नहीं है, ये तो कयामत कयामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के लिए ये हुक्म है। और कुरान कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता जिसके ऊपर अमल मुमकिन ना हो, लाई कर लिया रचन इला लिखा, अल्लाह तला किसी ऐसी बात का हुक्म लेते जिसका ऊपर अमल मुमकिन ना हो। तो अगर साबिकीन किसी जमाने में खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि इस अमल इस आयत पर अमल करना मुमकिन नहीं, और ये वहाँ अल्लाह तआला से मुमकिन नहीं है, वो ऐसा हुक्म दे जिससे अमल मुमकिन ना हो। लिहाजा उसमें साफ साफ खुशखबरी यह है कि साबिकीन इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। अलबत्ता हुआ ऐसा जरा फरमाया करते थे कि वो बातें याद रखने की हैं, वो ये कि जब किसी मामले में मिलावट का दौर दौरा हो जाए तो उस वक्त तुम क्या अमल करते हो? फरमाया करते थे कि भाई हमारा दौर मिलावट का दौर है तो इसमें कोई चीज खालिश नहीं मिलती, आटा खालिश नहीं मिलता, चीनी खालिश नहीं मिलती, घी खालिश नहीं मिलता, तेल खालिश नहीं मिलता, तो कोई चीज दुनिया में खालिश नहीं मिलती, हर चीज में मिलावट है। लेकिन इस मिलावट की वजह से तुमने क्या करके अमल अख्तियार किया? क्या तुमने जिस चीज में मिलावट है उस चीज का खाना छोड़ दिया? तो भाई आटा क्योंकि मिलावट आटे में मिलावट है लिहाजा आटा खाना छोड़ दिया, जब अंडा आटा नहीं खाएंगे दूध खाया करेंगे, या अगर घी में मिलावट है तो क्या घी खाना छोड़ दिया, क्या कर दिया? मिठाई में मिलावट है मिठाई खानी छोड़ दी। यहाँ पर कर्ज अमल ये होता है कि आदमी बावजूद उस मिलावट के दौर को तकलीफ करता है, जिंदगी करता है, तलाश करता है, और तलाश के नतीजे में पहुंच जाता है कि भाई फिलहाल दुकान पर घी खाली मिलता है, फिलहाल दुकान पर गोश्त अच्छा मिलता है, फिलहाल दुकान के ऊपर मिठाई अच्छी मिलती है, तो वो ढूंढ ढाल के तलाश करके निकाल जाता है और उसके नतीजे में खाली चीज से मिल जाती है। और चीज खालिश नहीं मिलती तो इसी तरह आलिम भी ज्यादा आलिम भी खालिश नहीं मिलता, मौलवी भी खालिश नहीं मिलता। लेकिन अगर तलाश करोगे तो कुरान कहता है कि मौजूद रहेंगे क़यामत तक, या तो तलाश करोगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि ना मिले। हाँ अलबत्ता एक बात याद रखने की आदत सुना रहे थे, जो जिसकी वजह से शैतान धोखा देता है वो ये है कि आदमी खास बस अंग्रेजी से कितने अक्षर काफिलीन में हो, बस अंग्रेजी से इंतहा तो पाता हुआ हो, लेकिन जब अपने लिए किसी मुस्लिम की तलाश में निकलता है या फिर किसी मुरब्बी की तलाश में निकलता है तो उसको जानता है जना तो शिवली के मैार है, तो नया मुस्लिम और नया मुरब्बी लेकिन कभी आगे दीवानी होना चाहिए और वो दुनिया को बर्बादी होना चाहिए और वो मेरे दिन किसकी होना चाहिए, तो ये शैतान का धोखा है। हम लोग ऐसा फरमाया करते थे कि अरे भाई जैसी रूम वैसे करेंगे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे मुस्लिम भी होंगे, अपने मुस्लिम को उस मैार से मत जांचो जो मैार शहर का जो जुलानी हम चला रहे था और जो मैं बिना जो बर्बादी करता लोग वापस नहीं आने वाले, लेकिन तुम्हारे लिए
ऐसे लोग तुम्हारे लिए आप लोग मौजूद रहेगा, आज भी मौजूद है, मिल जाएगा। जमाना बदलता रहता है, जमाने के बड़े हताश है, अपने हताप की वजह से हालात बदलते रहते हैं। एक हिंदू शायद सैतानवे वाले साल सुनाया करते थे, एक हिंदू शायर था, उसने एक वाक्य नजम किया है, अगर कुछ वाक्य ये नजम किया और सच्चा वाक्य है, तारीख में मौजूद है। तो दूध एक रोज दूध का रात किसी ने यह आग की मुकदा ये नजर का अलिय मुकदा बोला था, उनसे किसी ने यह सवाल किया, एक रोज दूध का रात किसी ने यह आग की और ना इधर रसूल अमीर दामा दिल जुके दूध और उमर के जमाने में चैन था, उस्मान के भी अहद में लग रहे था, ये खुद क्यों आपने के अहद में झगड़े ये पड़ गए, अपनी भी आकल भर गई इस मसले में बुद्ध। मतलब ये कि सिद्दीक अकबर के जमाने में अमर आपकी खास चैन था, सुकून था, और उमर के जमाने में भी चैन था, उस्मान के जमाने में भी चैन था, लेकिन अड़तालीस के जमाने में आकर झगड़ने शुरू हो गए, कितने शुरू हो गए, तो क्यों आप ही के अहद में झगड़े ये पड़ गए, अपनी से आकल हो गई इस मसले में बुद्ध। तो ऐसा ही जवाब दिया, कहने लगे ये बात कोई सूझ लेती है, अधिकारी ने जवाब दिया, कहने लगे ये बात कोई सूझ लेती है, उनके मुशीर हमसे हमारे वकील तुम, उनके मुशीर हमसे हमारे वकील तुम, सिद्दीक अकबर आखिर फारूक आजम और अकबर गए जो थे हम मुजुर्ग होते थे, तो उसके नतीजे में अलहमदुल्ला चैन था, आराम था, अब हमारे तो हमारे वकील तुम बन गए, तो इन ऐसे मुसीबत के नतीजे में ये झगड़े पड़ गए, कितने खड़े हो। ये वाक्य है इसने खरीदी ने तारीख में नकल किया है, तभी ने यही जवाब दिया था उस आदमी को, और वाक्य यही है कि जितने झगड़े हुए सारे कराम के जमाने में मुछा जवाब देखो इसी किस्म के लोगों की कितना सरदारियाँ थी, तो इस वजह से झगड़े पैदा हुए। तो हर दौर के अंदर हालात बदलते रहते और औकात में बदल जाता रहता, ये भी बातों के अब किसी आदमी को जिसके मोदी बनाना चाहते हो तुम्हें मुझे उस मैार पर चाहिए, बल्कि जब तुम अगर वो बहसे पर मजबूरी बहसे पर मजबूरी इनमें सही रखता है, बहसे पर मजबूरी उसकी जिंदगी जो है वो दीन के मुताबिक है, खुले खुला गुनाहों में मुबतला नहीं है और इनमें सही है, और उसने खुद अल्लाह के नेक बंदों की शोभा दिखाई है और उनकी तरबियत हासिल की है और उन्होंने उसको किसी इस्लाम के मंसब पर कायम किया है, तो बस अब जब तुम उसके पास जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे से सारा इंशाअल्लाह कबूल करवा देंगे और उसके शोभा से तुमको फायदा पा सकते, और याद रखो फायदा इसलिए पहुंचेगा कि इस कायनात में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नफा नहीं पहुंचा सकता, पहुंचा सकता है चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो शेख हो, चाहे मुस्लिम हो, बरबी हो, किसने बात क्यों ना हो, कोई इंसान दूसरे इंसान को फायदा नहीं पहुंचता, फायदा तो वही पहुंचाते हैं, अता उन्हीं की तरफ से होती है, जो कुछ अता होता है उन्हीं की तरफ से होता है, अलबत् उनकी सुन्नत यह है, हमारे अलग अच्छा जो उनकी सुन्नत यह है कि वो अता के लिए किसी को अपना वास्ता बना देते हैं, अता करने के लिए किसी को रास्ता बना देते हैं, हमारे समझा देते हैं चाहे वो सजराए पूरी क्यों ना हो, उनको सुनना चाहिए कि किसी को रास्ता बना देते हैं तो आता के लिए भी रास्ता बना देते हैं, तो वो जब किसी बंदे में कलंक साबित देते हैं काफी कलंक है मेरे अंदर, आपके मेरे दिन के ऊपर पढ़ना चाहता है और ये अपने इस्लाम करना चाहता है, जिसमें आप इस्लाम करने के बाद उसने रिव्यू भी किया है किसी ऐसे मुस्लिम की तरफ जो बैठे पर मजबूरी वही एम रखता है और बैठे पर मजबूरी मुकदमे सुन्नत भी है और उसको तरबियत भी मिली है, शहबत भी मिली है, इजाजत भी मिली है, तो जब बंदा ऐसे आदमी की तरफ रजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म करम से उस शेख के कर्म तक और उसकी जबान पर वो बात जारी फरमा देते हैं जो इसने फायदे की होगी, और ये बड़ी
काम की बात है याद रखने से अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से तलब की वजह से उस्ताद से शेख से मुरब्बी से कर्ज पर लोग बातें जारी करवाते हैं जो कभी उसके अहवाल में या ख्याल में भी नहीं आई थी चले ऐसी बातें जारी करवा दी जो किसी की तलब से बरकत है किसी की तलब से बरकत होती है तो तलब साबित लेकर जाओगे किसी अल्लाह वाले के पास तो अल्लाह के बाद बताया उस अल्लाह वाले के कर्ज पर वो बातें जारी फरमाएंगे कि तुम्हारे फायदे की होंगे जिससे तुम्हारी इश्या हमारे अगर हाजी मारे या साहब ना अगर मस्ती हमसे लाए तो एक उनको मरीज ने कहा कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मिला आपसे फैज मिला हमारे हाजी साहब हमसे लाए थे जो कुछ मिला आपसे मिला फैज तो हजरत हाजी साहब साहब ने फरमाया कि मेरी बात यह है कि तुम्हें तो यही सोचना चाहिए यही सोचना चाहिए कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मेरे शौक से मिल रहा है लेकिन हकीकत यह है कि आप रहा कोई और तुम्हारे दिल में अगर तलब ना होती तुम्हारे दिल में अगर तलब ना होती तो कुछ भी ना मिलता मेरा तुम्हारे असली तलब की बरकत है ऐसे मिसाल दी अगर तुम बड़ी मजे की मिसाल दी मिसाल ये दी नगर से एक औरत थी उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए उसे आग की जरूरत थी अब तो आ गया सूजा पर लगाने का कुछ नए से नए चूल्हे आ गए तो अब वो सबसे मिले आग के आग नए पहले जमाने में लकड़ियों में जलाते थे कोयले जलाते थे तो चूल्हे के अंदर आग जलाने के लिए पहले कुछ जरूरत होती थी तो पहले से कोई आग जली हुई हो तो वो लकड़ी के साथ मिलाई जाए तो फिर लकड़ी आग पकड़ेगी तो उसको चूल्हा जलाना था और आग जीने घर में पहले जमाने में होता ही था कि जब किसी औरत के पास घर में आग नहीं है चूल्हे में तो किसी कुछ प्रयासन से आग मांग लेती तो उस बराबर प्रयासन की उसके दीवार से उससे बात करनी शुरू की कि भी मेरे घर में चूल्हा ठंडा है आग जलाना चाहती हूँ तो फिर आग दे दो मुझे तो उस प्रश्न ने कहा कि भी मेरे चूल्हे में तो आग है नहीं मेरे चूल्हे में भी आग नहीं है कहाँ से दूँ तो उसने कहा प्रश्न ने कि अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे चूल्हे को पूरे दूंगा रहता चूल्हे को मैं बहुत सारी राख खोल दिया तुम्हें भी मेरे पास लोग छोटे मोटी चिल्लाई कहीं नजर आ जाए तो यही कैसा मेरा ठीक है इजाजत आ जा ये गई और जाकर चूल्हे को परेदना शुरू किया घरेगा फिरेगा फिरेगा तो उसमें से छोटे की चिंगारी मिल गई और चिंगारी जो मिल गई तो थोड़ा दूरी अभी चिंगारी मिल गई है वहाँ से मुबारक कर जाए ले जाओ उसको उठा लो उठा लो तो ले गई हजत फरमाते हैं भाई साहब दिया कि इस प्रशन ने क्या जो आग पैदा कर दी चिंगारी निकाली उसे चिंगारी पैदा की पैदा कर दी नहीं पहले से चूल्हे में चिंगारी मौजूद थी इसका काम इतना हुआ कि पेट पेड़ कर उस चिंगारी को बाहर कर लिया और बाहर करके उससे दूसरा चूल्हा छिड़का दिया शौक का काम मकसद इतना होता है कि अंदर की चिंगारी दबी हुई होती है तो प्रेम कर बाहर निकालो अगर अंदर चिंगारी ही नहीं है तो कितने पुरेंगे तो पुरेंगे के बावजूद निकलेगा कुछ भी लेकिन अगर अंदर चिंगारी मौजूद है तो शौक उसको प्रेम कर और आगे पीछे करके वो चिंगारी बाहर निकाल लाता है उसके नतीजे में दूसरी आग पैदा हो जाती है तो फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में चिंगारी न होती तलब की तो शायद कितना ही भारी क्यों ना होता लेकिन वो तलब की चिंगारी को तुम्हें दिल निकाल हो सकता था सबसे तो खालिक नहीं है पैदा करने वाला नहीं है तो पैदा कर दे हाँ जब तलब की चिंगारी होती है तो फिर शब्द काबिले को उसको प्रेड कर बाहर निकाला है तो अपार अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जो शख्स तलब लेकर चलता है अल्लाह के रास्ते पर तो वो अल्लाह ताला उस पर फजल फरमा देते हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर नेमत फरमा देते हैं और उसको अता फरमा ही देते हैं रास्ता उसकी दिशा आपको बना दिया जिसे गई बना दी तो शौक अपने रात में तो चीज नहीं
میں اس کے پاس نہ کوئی غلط پہنچانے کا کوئی کسی طاقت ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں, بس ہے کہ دینے والے کو دل کر لینے والے کو دل کر طلب. تو جب تم نے طلب پیدا کی اللہ کے راستے کی طرف پیدا کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا, عمل کیا کیا کہ تلاش کی, جستجو کی, تحقیق کی اور اپنے دانش کے مطابق بہترین تحقیق کرنے کے بعد جو آدمی تمہیں بہتر نظر آیا ان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے اس سے رجوع کر لیا تو تمہیں اپنا کام کر دیا, میں اپنا کام کر دیا, اللہ تعالیٰ اپنا کام کر دیا کہ اس طرف کی برکت سے اس آدمی کو بہتر وہی نام ڈالیں گے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. جیسا ہوتا ہے اور ہمیں ہمارے پیارے فرماتے ہیں اور یہ عام بات ہے مجلس میں جو لوگ جاتے تھے تو کثرت سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ ہم دل کے مطابق بہت سارے سوالات لے کے جاتے ہیں, شہاد اثرادات سوالات دل میں لے کے جاتے ہیں, سوچے کبھی موقع ملے گا تو پوچھیں گے. مجلس میں جاتے بیٹھے تو انہیں سوالات کا جواب حضرت کی زبان پر آ رہا جو ہمارے دل میں ہے, وہی باتیں آ رہی ہیں زبان کے اوپر, ہم جب دل باتیں فرما رہے ہیں جو ہمارے دل میں ٹھٹک رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کو کشٹ ہوتا ہے, کشٹ ہوتا ہے, ٹھٹک ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آدمی کے دل میں یہ سمجھ پیدا ہو رہا ہے, لہٰذا اس کا جواب حضرت اپنے بیان میں دے دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے کشٹ نہیں ہوتا, کشٹ نہیں ہوتا, اپنے فضل کرم سے میرے قلب پر وہی نام ڈال دیتے ہیں جو تمہارے سوال کا جواب ہو, یہ برکت ہے تمہاری قلب. تو اسی آپ کو بڑا روم فرماتے ہیں کہ آپ سمجھو کس نبی آور بدل, آپ سمجھو اس نے بھی آگر بغیر کام دے کر آپ اب ڈالا ہوتا کہ پانی کم تلاش کرو, اس نے بھی پیدا کرو پیاس پیدا کرو, اور جب پیاس کئی معنی میں پیدا ہو گئی تو پانی اوپر اور نیچے ہر طرف سے بہتے بہے گا, جوش مار کے آئے گا تمہارے پاس اگر پہلے پیدا ہو گئی. تو حضرت یہ اللہ کے بارے کو بتانا تھا لگا ہوا نظام ہے کہ اس واقعے جب اپنی دانش میں تحقیق کر کے گفتگو کر کے تلاش کر کے کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لیا اور اس سے رجوع کر لیا, کیونکہ اپنا کام تم نے کر لیا تو اللہ کے بارے میں تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے پل سب تمہارے فائدے کی بات آئی, اور نہ کسی نہ انسان کے قبضے میں کچھ نہ کسی کو نفع پہنچا نہ ضرور پہنچا. تو جب یہ بات ہے تو یہاں پر یہ ضرور جو ہے تو صاحب ہمیں آدمی ملتا ہی نہیں, ہمیں تو بہت تلاش کیا کوئی بلا ہی نہیں, ہمیں تو تلاش کیا ہی نہیں, شام کا تلاش کر دیتا تلاش کیا ہی نہیں, اور اگر تلاش کیا بھی تو جنہوں نے برطانوی کو تلاش کیا, اور اس کے بعد جیلانی کو تلاش کیا, یہ نہ دیکھا کہ میرے لائق میرے فائدے کے لائق کون ہو سکتا ہے, یہ نہ دیکھا, اس کی وجہ سے محروم ہو رہے. ہمارے جیسا سمجھتے ہیں کہ اگر اور کوئی نہ ملے تو میں کہتا ہوں تم اپنی محلے کی مسجد سے مسجد کے پاس جا کر بیٹھا کرو, اس کے بعد جو پانچ وقت اللہ کے سلام گلم اللہ کا کلمہ گلم کرتا ہے اس سے تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا, جیسا کہتے الگ فائدہ. تو یہ بات بھائی تحدیث میں اس روایت میں تبدیل کی جا رہی ہے کہ بھائی علماء پر اثرات اور قید کرنے اور بچنے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ دیکھو کہ صحیح عالم کون ہے اور بس اس کی بات کی اطلاع کرو, اور دوسرے علماء کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیوقوف لوگ کہ جو کتیا کے پیٹ میں بولنے والے چلوں کی طرح ہے وہ تمہیں صحیح راستے سے ڈگمگا دیں, تم پر غالب آ جائیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے تم اپنا راستہ بدل دو. جو راستہ صحیح طور پر قرآن سنت کے وقت میں کیا کیا ہے اس کا قائم رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے کیا کرتا ہے. आगे खरीद है हम अभी लग रहा था काला रोटी लगाए हैं और दुआई गए
मुझे कुछ जरूरत पेश आई हर लोग सारे आदम के पास जाकर अपनी जरूरत पूरी करने की तो मैं हजरत के खिदमत में हाजिर हुआ सारे आदम उन्होंने जो काम हम अपनी जगह पर किया होगा तो मुझे लोग सब जानते हैं कि मेरे अंदर जहाने की भी बहुत थी अच्छा जगाने की बहुत यानी दिल से कहा तो बराबर और अपनी बात को बड़ी पूर्वक से पेश करना और शराखत बढ़ाने को पूरी करना कला ने मुझे जहानत भी खूब दी और बात करने का सलीका भी बड़ा आता करवाया तो मैं उसने जहानत और बात करने के सलीके की बुनियाद पर अगर सारे के आदम की मजलिस में मैंने बोलने शुरू किया और इस तरह बोलने शुरू किया कि मैंने दुनिया की खराबी बयान करनी शुरू की तो दुनिया कितनी खराब थी और मैंने उसकी इतनी तकलीफ की दुनिया की इतना बुरा कहा दुनिया को कि आखिरकार मैंने ये कर दिया कि ये दुनिया किसी भी काम की नहीं है बेकार चीज है बेफायदा है ना कसवा खैर ये जरा की एक रस्ती किसी चीज के बराबर नहीं है सब जोड़ा जोड़ा तो जब मैं इतनी बुराइयां बयान कर रहा था दुनिया की तो हमारे सरकारों के आदम के पास एक साथ बैठे हुए थे जिनके दाल भी सकता है और कपड़े भी सकते हैं यानी जरा उम्र रसीदा थे तो कपड़े भी पड़ जाएगा दाल भी सकता है जब मैं सारी अपनी तकलीफ कर चुका दुनिया की बुराई थी तो उन बुजुर्ग ने जिनके दाल पकड़ थे और कपड़े भी पड़ जाते उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ आपने फरमाया सब बातें जो हैं वो मेरी हद तक ठीक थी और बहुत यानी करीब करीब थी जो तुमने अपनी जाकर मेरी हद तक ठीक थी लेकिन किस देर तक तुमने जब दुनिया की बुराई जिस अंदाज पर बयान दी तो ये बात तुम्हारी सही नहीं आकर फरमाने लगे कि जानते हो दुनिया क्या होती है दुनिया ऐसी चीज है कि इसमें हमारी हादसे हमारी उससे लागत है और हमारा आखिरत का पैसा भी यही दुनिया को मिलने वाला है और दुनिया जो है जब दिल आखिर हमारे अमाल जिनके बदले में आखिरत में हमें अलग अलग लाग देंगे वही तो इसी दुनिया में है तो दुनिया को उस तरह बुरा कहना कि अगर प्रोफेशन ये काली काली है खराबी खराब है ये बात दुरुस्त नहीं तो मैंने बहुत सारे कार्यों को पूछा कि ये साहब जो ये बुजुर्ग जिन्होंने ये बात कही ये कौन है जो आपके पहले में बैठे हैं सारे कागज में बयान फरमाया कि सब विजय मोमिन है मोमिनों के सरदार कौन है उदय युद्ध साफ रसे अगर उदय युद्ध साफ रसे जिन तरफ से कभी सरे कागज पर ला कर ने अपना उस शहादा करार दिया कि सारे कागज क्रांत सबसे बचे बयान करें की तिलावट करने वाले वो हैं तो उन्होंने कंक्लूड की इनकी उस तकरीर पर जिसने उन्होंने दुनिया की बुराई ही बुराई बयान की और इसलिए करते फरमाई कि भाई हर बात में एतबार चाहिए ये नहीं कि अगर एक जानिब भलक गए तो बस 100% भलक गए दुनिया का ये दो छाने हैं और दोनों छानों का लिहाज रखना जरूरी है ये सही है जो कुरान करीम में फरमाया गया कि अगर हया की दुनिया तो यह बताए गुरु ये दुनिया की जिंदगी के धोखे का सामान है
ये भी सही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया जीतत व तालिबुहा खिलाफ ऐसा ना कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया जो है मुर्दार है और उसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। ये भी ना बोला सुनना आया है दुनिया की मरम्मत वाली हुई अगर हमें समझ में, लेकिन साथ साथ इस दुनिया के अंदर कुछ बेहतरी भी है। अगर उस दुनिया बेहतरी ना होती तो हमें आपको इस दुनिया में भेजा ना जाता। और कुरान करीम ने इस दुनिया के लिए बात लगा तारीखी अल्फाज भी इस्तेमाल करना है। अगर दोनों पहलुओं को सामने रखना जरूरी है तो अगर दुनिया न हो तो फिर हम जिए कैसे? अगर पैसे ना हो, रोटी ना हो, सालन ना हो, कल फांसने का कपड़ा ना हो, सर छुपाने का घर ना हो तो आपको जिंदा कैसे रहे दुनिया में? और फिर दूसरी बात ये कि आखिरत बनाने के लिए भी अल्लाह तआला बता रहे दुनिया ही को जीना बनाया है। ये दुनिया आखिरत की शक्ति है। अगर दुनिया ना हो तो फिर आखिरत भी इंसान को नहीं मिल सकती। और इसी दुनिया के अंदर जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं जो आखिर जन्नत के ऊपर बनती रहते हैं, जिससे जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। अगर दुनिया ना हो तो वो अमाल कहाँ से हो? नमाज कैसे करे आदमी? रोजा कैसे रखे? अलग अलग से इबादत कैसे करे? अलग अलग से इबादत भी करेगा और जो काम भी करेगा तो जन्नत में कैसे जाएगा? लिहाजा ये बात नहीं जो सौ बुरी बुरी है दुनिया। हाँ दुनिया अपनी बात में, दुनिया अपनी बात में इंसान की जरूरत है, लेकिन जो चीज बुरी है वो है इस दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत का दिल में बैठ जाना और ऐसा बैठ जाना कि उसकी वजह से इंसान दिल को दान दे कर दे, दुनिया के ऊपर दिल को प्रदान कर दे, दुनिया की लज्जतों पर, दुनिया के ख्वाहिशात पर, दुनिया के मसादात पर इंसान आखिरत के मसाद को प्रदान कर दे, यह है बुराई की बात। इसलिए बच्चों वरना ये दुनिया जो है अगर आदमी कुछ कुछ शरीयत के मुताबिक अमल करे और सुन्नत के मुताबिक चले तो ये दुनिया जो है बिल अजीब नेमत अल्लाह तआला के पास और इसी के जरिए जन्नत मिल जाएगी। इसीलिए फरमाया कि लोग सब सुन्नत से मौत की तमन्ना ना करें, या तमन्ना लल्ला अहद कौमिल मौत, मौत की तमन्ना ना करें। इस रास्ते से तुम्हें नहीं मालूम कि अगर आज मौत आ जाए तो कहाँ जाओगे? क्या तुम्हारे अमाल ऐसे हैं कि जिससे नतीजे में जन्नत पर पहुंच जाओ और दोजख से बच जाओ? कुछ पता नहीं उसका अंदाजा ना। और अगर ये जिंदगी मजीद हमारे उम्र के अंदर कुछ इजाफा हो तो जो लम्हा मिल जाए अल्लाह तआला की तरफ से वो अल्लाह तआला की नेमत है। जिंदगी का जो लम्हा भी मिल जाए अल्लाह तआला की नेमत है, क्योंकि तुम्हें पता हो उन्होंने कोई ऐसी नेकी कर गुजरे गुजरे जो तुम्हारा बेड़ा पार कर दो। अच्छा करने की तब नहीं हुई थी, अच्छा करने की तब हो जाए। इस वास्ते जो भाग लोग समझते हैं कि ये दुनिया जो है जल्दी से जल्दी भागो यहाँ से और जल्दी से जल्दी मरने की तमन्ना करो, ये बात करिए। इस वास्ते तो इसी दुनिया के अंदर रहते हुए तुम्हें अपने आखिरत की तैयारी करनी है। लिहाजा इसको जब तक जिंदगी मिली हुई है उसको अल्लाह ताला की नियमत समझो। जो कुछ दुनिया की नेमतें अल्लाह तआला ने अता फरमाई है उस पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह तआला बताएंगे जो मुझे नेमत अता फरमाई और उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करो। बच्चों कुछ बात से फिर उस दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए और उसके नतीजे में तुम्हें सही आंसर से बता दो। ये दोनों बातें अकदाल की है, एक ही तरफ बस बुराई बुराई का आंसर को लगाना ये दुरुस्त नहीं। इसीलिए फरमाया उसे ब्याह ये करो कि बना आपके यहाँ से दुनिया आना चाहिए था मेरे को आपके यहाँ से आना चाहिए था मेरे को ना आवा देना तो अल्लाह हमें दुनिया में खाई दीजिए और आखिर को भी खाई ये जाने जा कुरान करीम में तस्लीम फरमाई। अगर दुनिया बिल्कुल ही खराब ही खराब होती तो फिर आखिर दुनिया से मैं अच्छा ही नहीं जाना। जो दुनिया को मैंने हाँ रखा उसका दिल में लगा ऐसा दिल में लगा कि उसके नतीजे में आखिर हासिल हो जाए। अल्लाह ताला की यही रखता हमें उसी तरह करता है। आखिर में एक हदीस और है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं बड़ा अपने आदिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخره الشهر حضرت الله بن عادل
رضي الله تعالى عنه وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوكي هزار بظهار نا بحث بريدا بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی شوکی بگاڑتے ہیں اپنے اچھائی کا تذکرہ کرنے کرتے ہیں میرے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں نے ہر وقت اپنا نام جان دے دیا وغیرہ وغیرہ تو یہ سب شوکی بگاڑنا ہے اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت پسند نہیں بہت بری بات کہ آپ دوسرے کو بگا رہے ہیں یہ تکبر کا پیدا ہے تکبر کا پیدا ہے عجب کا پیدا ہے شوکی لگا رہے تو اس کو بچنے کی ضرورت جو کچھ کام کرنے کی کوشش ہو گئی جو اچھا کام کرنے کی کوشش ہو گئی اس کا ذکر اپنے شوکی کے انداز میں نہ کرو اگر کرنا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے انداز میں کرو تو میرے اللہ تعالیٰ کا رسول بتا رہا ہے میں تو آپ کھانے اللہ تعالیٰ کے کارن مجھ سے یہ کام دے دیا اللہ تعالیٰ کے کارن مجھ سے یہ کام کرا دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا انعام ہے اس کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا اپنا اپنا ذکر بھی یہ کر دیا بھی یہ کر دیا تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی بھی بری ہے اور واقعی میں لکھ رہا ہے اور کیوں کیا کر دیا ارے اللہ کے لگانے کی توفیق نہ ہوتی اللہ کے بارے بتایا کہ اسے یہ کام نہ لیتے تو تیری مزاج کی چکر بولے تھا جو کچھ ہوا ہوا میں ہم سے کہہ رہے جو کچھ ہوگا تیرے طرف سے ہو کیا پائے گا کہ دیکھ کے کم سے ہوگا انسان کی مزاج ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریر کے بغیر کوئی کام کر دیجیے لہٰذا چاہے کی شوقی اور چاہے کا سفر اور کیا کرنا ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریر نہ ہوگی تو لہٰذا واقعی کے خلاف ہے اگر کوئی سب یہ کہا کہ میرے لیے میرے جو اس کا راستہ اگر بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو اس نے مجھ سے یہ کام کرا لیا میرے بچہ نہیں تھا میں شاید نہیں تھا میں کرنے والا نہیں تھا میں والدہ کے فضل و کرم سے کرا لیا تو اس طرح کہو گے تو میں شوقی ہوگی اور میں تکبر ہوگا اور ساتھ ساتھ شکر ہوگا اللہ کے والدہ کا اگر شکر ہوگا تو میں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں تھا اللہ نے کرا لیا تو تکبر کی جڑ بن جائے گی الاشرف الصبر یہ بھی لگانا اپنے کارناموں کا ہر بند کر کے ذکر کرنا یہ بہت ہی خراب بات ہے اس کو کسی کو تعلیم بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس پر پہلے کرتے ادا کرنا ہے راہل گایا نے محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اللهم نسألك التوفيق لمن حافظ الأعمال وصدق التوكل عليه وحسن الظن به اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحدث وانت على كل شيء قدير اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية يا رب الراحمين يا غافر المخلصين يا امام المستجيبين کرنا اللہ تمام حاضرات पर करना, जो परिवर्तन है उनके परिवर्तित को दूर करना, जो परिवर्तन आ रहा है उनके परिवर्तन को रखा करना, जो आने लग रहा है हर सब सब लोगों को दिल के बराबर को क्या उस बराबर करने पर जो करें सब पूरा करना। कई बात नहीं है उसकी कर्मचारी भाषा और अपने आप जो करें नहीं है यहाँ लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक भी कर्म सब भाषा और अपने आप जो करें नहीं है यहाँ लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बना सब बनना इन काम पर समय आए जबकि आए ना इन काम पर तैयार हो रहे وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمته.